और आज हम सबके समक्ष हैं। हम बड़े प्यार से, बड़े दिल से दादी जी के सम्मान में करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज वो आपको इस विषय पर स्पष्ट करेंगे जो बाप दादा हमेशा कहते हैं कि बाबा का सपूत बच्चा बनना है। तो सपूत बनकर कैसे हमें सबूत बाबा के सामने रखना है, इस विषय पर आज दादी जी आपके सामने प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी।
ओम शांति। ये युवाओं का आवास रहा है? दूर से अगर कोई सुने तो समझे कि ये युवाओं का आवाज है। ओम शांति। अब जागृत हो गई। यह भी जीवन का नियम है, जागृत होना और क्या कहेंगे उसके बाद है? अच्छा, हम तो इतना ही कहेंगे, जागृत रहना, सदा जागृत रहें, क्योंकि आत्मा जागती ज्योत है। और अब जबकि हम जानते हैं हम आत्मा हैं, आत्मा ही समझ के हमको सब कुछ करना है। अगर ये हमें स्मृति है, स्मृति माना ही जागृत रहना। तो जितनी जितनी हमें स्मृति होंगी, जितना समय हम स्मृति स्वरूप बने हुए होंगे, तो मानो हम जागृत रहेंगे। अंदर से तो जागृति रहेंगे, बाकी शरीर के नियमानुसार समय प्रमाण, जैसा समय अथवा जो समय निश्चित रहेगा, उस निश्चित समय पर शरीर से ऐसा ऐसा कार्य कराते रहेंगे। तो आप सभी शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा मुख कमल से पैदा हुए युवा भाई और बहनों, वैसे तो ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, ये हमारा शुरू शुरू का टाइटल। बाबा हम बच्चों को जब भी पत्र लिखते थे तो पहला ऊपर में यही टाइटल लिखते थे कि शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, फिर आगे उसके नाम आदि और जो भी पत्र में बाबा को लिखना होता था। यह हमारा जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, यह टाइटल हमें वो याद दिलाता है। हमारा जन्म भी सर्वश्रेष्ठ है और हमारा जिस बाप से जन्म है वह बाप भी हमारा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जितना भी हम ग्रेट कहें उतने ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे कहेंगे ना। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, याद है ना ये बात? है याद, समझी हुई है ये बात? शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, उसको दादा हम नहीं कहेंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा वह हम ब्राह्मणों का बाप है, परंतु हम ब्राह्मणों का बाप वो है जो सर्व जो भी मनुष्य रचना है उस सारी रचना का बाप है, जिस कारण उसको ग्रेट ग्रेट रचना से रचना होती, रचना से रचना होती। डिवाइन फादर्स के द्वारा और धर्म शुरू होते, नंबर वार शुरू होते जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। और जब हमें ये सदा स्मृति रहे, हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, तो आप सोचो जब यह स्मृति हमारे मन में जागृत रहेंगी तो मन के अंदर कितना उमंग, और उमंग के साथ हमें वो नशा कि हमारा बाप कौन, हमने किससे जन्म लिया है, और वह भी हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है। हमें इस बात की स्मृति सदा रहनी चाहिए, ये हमारा जन्म, अभी का हमारा जन्म। भल हम कहेंगे शरीर का जन्म तो पहले ही हो चुका है, परंतु जब से हमें स्वयं की स्मृति मिली, बाप ने हमें स्वयं की स्मृति दिलाई, और जब हम स्मृति स्वरूप बन करके इस अपने शरीर के द्वारा वह श्रेष्ठ कार्य करने में लग जाते हैं, तो ये हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है। और पहली स्मृति अगर हम कहें, जैसे हम लोग जब शुरू शुरू में आए तो हम सबको पहला ये नशा जरूर रहा, हम किसके बच्चे हैं, हमने भगवान के पास जन्म लिया है, ये हमारा नया जन्म है, और वो नया जन्म भी दिव्य और अलौकिक जन्म है। जो जन्म साधारण मनुष्यों के सदृश नहीं है, परंतु ये जन्म हमारा अलौकिक और दिव्य है। यह स्मृति वैसे भी कहा जाता है ना, जैसा जन्म, एक तो जन्म भी अपने पूर्व निश्चित संस्कारों से होता है, वैसे लौकिक जन्म तो उसमें वो संस्कार ऑटोमेटिक अपने काम करते हैं। और जब हमें ये स्मृति पक्की रहती है, यह हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, हमने उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से दिव्य जन्म लिया है, यह स्मृति ऑटोमेटिकली हमारे पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर देती है। हम लोगों के जीवन में यही विशेष बात रही जो हमें सदा ये याद रहता था, क्योंकि जब हम आए, और आप लोगों ने सुनाई है हिस्ट्री से, तो हम सब का जो शुरू में हम यज्ञ में आए हैं और स्थापना के समय हम निमित्त बने, उन सब ने एक धक से पुरानी दुनिया का त्याग कर लिया, ऐसा जो कभी संकल्प मात्र भी, पुरानी दुनिया तो क्या, लेकिन पुराने अपने लौकिक संबंधी माँ बाप सगे संबंधी कोई संकल्प मात्र भी याद नहीं आए। आप समझते हो कि ऐसा हुआ होगा, ये सत्य बात है, ये अपने जीवन का अनुभव है। कारण बस यह हमें पक्का विश्वास हो गया, हम तो अभी मर गए, अब हमने नया जन्म लिया है, और ये जन्म हमारा दिव्य और अलौकिक है। तो आप सोचो हमारी बुद्धि में क्या रहेगा, दिव्य विचार, अलौकिक विचार, जो हम अपने बाप से सुनते रहेंगे बस वही हमारे विचार रहेंगे, और कोई भी विचार यहाँ वहाँ का इधर उधर की बात हमारे बुद्धि में बिल्कुल नहीं आती थी। यह प्रैक्टिकल हमारे जीवन का अनुभव है, और एक का नहीं, जो भी उस समय हम लोग आए थे। कल आप लोगों ने सुना ना दादी जी का अनुभव, जब से आए आज तक, जब से आए बस एक बाप दूसरा न कोई। पूछो हर एक अपने आप से, भले आप दुनिया में रहते हैं, संसार के कार्यों में भी लगा हुआ है, क्योंकि अभी के समय में ज्ञान का विस्तार बहुत है। ज्ञान से क्या क्या करना है वह बुद्धि भी आपकी समझ लेती है, और उस अनुसार इतनी समझानी से स्पष्ट है जो हर कर्म को हर बात को आप समझ करके कर सकते हैं। शुरू में ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, परंतु विस्तार न होते हुए भी यह निश्चय का बल वो इतना काम करता था। जैसे कि हमारी बुद्धि जन्म से ही दिव्य बनी हुई है, क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ये बात जरूर याद रहनी चाहिए कि ये हमारा नया मर्जीवा जन्म है। तो अपना पुरानापन मर गए, ये भी याद है हम मर गए। जब मर गए कोई भी पुरानी बात याद आए, अरे अभी तो हम मर गए, वो सब मेरे लिए मर गए, उनकी बात याद करके करेंगे भी क्या? मरे हुए की बात को याद करने से क्या होगा? खुद उसके दुख में रहेंगे ना, उन बातों को याद करके दुखी होंगे, बाकी मरे हुए से तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो अगर हमें ये पक्का याद है कि हम मर गए, और केवल मरे ही नहीं परंतु नया दिव्य जन्म हमारा हो गया, तो हमारी बुद्धि दिव्यता से भरपूर हो गई, और हमारे अंदर वो दिव्य विचार कहाँ से आए? दिव्य विचार क्योंकि रोज रोज हम बाप के महावाक्य सुनते रहे, तो पूरा अटेंशन उन महावाक्यों पर, क्योंकि बुद्धि में और कोई बात नहीं। अब हम अरे जीवन के अंदर पहली ये बात जरूरी है, निश्चय बुद्धि जिसको कहा जाता है, निश्चय की परिभाषा, हर बात में निश्चय, पहला निश्चय, पहला निश्चय मेरा बाप, साथ में दूसरा निश्चय मैं कौन। और फिर जब ये दोनों प्रकार का निश्चय बुद्धि हम बनते हैं, तो इसी निश्चय बुद्धि के आधार पर जो बाप हमें बताते हैं, जो कहते हैं, उन बातों का महत्व महानता, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम बच्चे, भगवान के महावाक्य ऊंचे ते ऊंचा। अब तो पढ़ाई ने भी स्पष्ट कर दिया है, मैं समझती हूँ कल की मुरली थी ये, कि ऊंचे ते ऊंचा बाप, ये बेहद का बाप, बड़ा बाप हमें कितनी ऊंची पढ़ाई आके पढ़ाते हैं, जिससे हम कितना ऊंचा बनते हैं। कौन सी ऊंचाई? हमें ऊंचे ते ऊंचा बेहद का वर्षा, स्वर्ग की बात्याई हमें इस पढ़ाई से प्राप्त होती है। कल की मुरली है जहाँ तक मुझे याद है। अगर ये बात हमारे बुद्धि में है पक्की, नॉलेज के आधार पर हमने समझ लिया है, लेकिन हमें अपने दिल से पूछना है, उस समय बाबा ने हम बच्चों में ये अभ्यास डाला नेचुरल, जैसे माँ बाप की नेचुरल पालना बच्चों को मिलती है, हमें भी नेचुरल रूप में, हमें ये नहीं कहा जाता है ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो और ये करो, मतलब विस्तार है पांच विकार से क्या क्या विकार दुख देते हैं, विकार नहीं होने चाहिए, दैवी गुण होने चाहिए, परंतु उस समय ये विकारों की नॉलेज की जरूरत नहीं। बाबा हम बच्चों को नेचुरल वे से, नेचुरल रूप से पढ़ाते गए, सिखाते गए और चलाते रहे। दिनचर्या नियमित बना ली, सवेरे सवेरे उठ करके योग के बाद एकांत में बैठो। हम एकांत में टहलते रहते थे और जो मामा ने कल मुरली चलाई उस पर हमारा विचार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और वो विचार जो चले वो फिर बैठ करके हम लिखते थे तो उसमें और वृद्धि आ जाती थी। और फिर और कोई विचार, सवेरे सवेरे बाबा से मिला हुआ खजाना अगर हमने उसको अपने अंदर में मनन कर लिया तो वो खजाना, एक तो मनन करने की शक्ति, दूसरा खजाने का जो विस्तार हमारे अंदर होता गया वो विस्तार हमें सारा दिन जैसे कि एक खुराक के रूप में कहो अथवा शक्ति के रूप में हमें चलाता रहा, जिस कारण यहाँ वहाँ की कोई भी बात, चाहे हमारा इतना बड़ा संगठन था, 350-400 हम इकट्ठे रहते थे, कोई किसको देखते नहीं माना, साथ रहते थे, किसकी कोई भी बात ऐसे हमारी किस पर ऐसी नज़र जाए ये ठीक नहीं है ये ठीक है, इन सब देखने के लिए कोई बुद्धि में ये बात किसकी आती ही नहीं थी। जो बाबा सिखाता है, जो हमारी दिनचर्या है, बस हमें उसमें चलते ही रहना है। यह एक नेचुरल रूप की पालना, जिसने जीवन में ये नेचुरल अभ्यास डाल दिया कि हमें बाप के महावाक्यों पर ही ध्यान देना है, और उसका फायदा क्या रहा, जो बाबा कहे वो मुझे प्रैक्टिकल में करना है ज़रूर। आज बाबा ने मुरली चलाते कोई डायरेक्शन दिया, कोई करे या न करे, किसे पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई को कहने की ज़रूरत नहीं, हमें वो करना है और हम अपना एकांत में जा करके जो बाबा ने कहा है ये ऐसे लिखो, फलाने को समझाओ, ये करो, जो कुछ मुरली में बातें आ गई बस उसी पर हमारा पूरी दिनचर्या चलती रही, जिससे फायदा क्या हो गया। जीवन में ये एक नेचुरल नियम बन गया, और जब जीवन में जो भी नियम बनाओ और वो नेचुरल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी नियम पे चलते रहने से वो फायदा हमें जीवन में अनुभव होता जाता है। वास्तव में देखा जाए पुरुषार्थ की सहजते सहज विधि, और हमारा तीव्र पुरुषार्थ कल सुना ना रमेश भाई ने बोला, बाबा से पूछा बाबा के दिल तख्त नशीन होने की क्या विधि है, है याद, है याद, तो क्या जवाब मिला, तीव्र पुरुषार्थ। चला विचार आप लोगों का, तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ऐसी ऐसी बातें जब सुनते हैं अपना फौरन विचार चलना चाहिए, इसको कहा जाएगा पुरुषार्थी, अथवा इसको माना जाएगा पुरुषार्थ का हमें अटेंशन है। तीव्र पुरुषार्थी की पहली निशानी क्या होंगी, क्या होंगी, तीव्र पुरुषार्थी की पहली निशानी, जो बाबा ने आज हमें लेसन दिया है उस लेसन को एक तरफ तो मैं बुद्धि में पक्का करूं, मनन करूं, और साथ साथ अपने जीवन की वह धारणा बना, जीवन में वो बात हमारे कर्मों में आ जाए, ये हमारे जीवन का पहला अटेंशन होना जरूरी है। देखो बचपन में बच्चे होते हैं, ऑटोमेटिकली जो माँ बाप करते जाएंगे, जैसे करते जाएंगे उसको कॉपी करते रहेंगे, माँ बाप को भी पता नहीं रहेगा। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा? देखा है कभी छोटे छोटे बच्चों को, जो अपने से बड़े होंगे, जिसके साथ होंगे, वो जैसा करेंगे वो भी ऐसा करते रहेंगे, जो खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो हम बाबा के बच्चे हैं, ये बचपन का संस्कार। वैसे भी कहा जाता है ना, बचपन बड़ा शुद्ध होता है, हमें याद रहना चाहिए। ये अभी हमारा नया जन्म है, भले पुराने जन्म में, भले अभी हमारा डबल जन्म है, आप लोगों का पुराना भी है और नया भी है, दोनों मिक्स है। क्योंकि पुराने अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कार्य पुरानी दुनिया में कर रहे हो, और साथ साथ बाबा से हम सबको आत्मा की पूरी नॉलेज और आत्मा को हमें कैसे सत्वप्रधान बनाना है उसकी पूरी समझानी मिल रही है। तो डबल कार्य है, लेकिन डबल कार्य में महत्व इस समय हमारे मन के अंदर किस बात का होना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करना है वो नियमित हो गया ना नियमित, और वो नियम अनुसार करना ही है और करते ही रहते हैं। लेकिन यह जो अब नई नॉलेज मिली है, नया जन्म है, वैसे ही भी कहा जाता है नई बात के लिए इंटरेस्ट रहता है, तो ये हमारा नया जन्म और ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ मैं, ये अगर हमें शब्द याद रहा तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अगर हमारी मनन शक्ति बाप के महावाक्यों को मनन करती रहती है, हमारे अंदर इस बात की दृढ़ता है जो बाबा ने कहा वही हमें अपने जीवन के अंदर धारणा बनानी है जरूर। यह अंदर में पक्की दृढ़ता चाहिए। जितनी जितनी इस बात की हमें दृढ़ता है, दृढ़ता माना ये नहीं कि हाँ मैंने संकल्प किया बस, लेकिन दृढ़ता हमारे में वो शक्ति जागृत करती है कि बाप के महावाक्यों को किस प्रकार हमें अपने कर्मों में लाना है, यह हमारे पास अंदर स्पष्ट होता जाता है। क्योंकि रोज रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा के महावाक्यों में इतनी शक्ति है, अगर हम उसको यथार्थ रीति से भगवानों वाच्य मान करके मनन करते हैं तो उन महावाक्यों की महानता और उन महावाक्यों की शक्ति हम स्वयं अंदर में अनुभव करेंगे। ये हम लोगों के जीवन का अनुभव। यह बात अगर हमने पक्की कर दी, बाबा ने जो आज कहा है वो मुझे अभी करना है, हर समय यह लक्ष्य, यह दृढ़ संकल्प हमारे अंदर बना रहे, और उसी दृढ़ संकल्प के आधार से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको बाबा के महावाक्यों में भगवान की महानता कितनी महान है ये आपको अंदर में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, और वो महानता आपको अपने तरफ आकर्षित करेगी। वह आकर्षण हमारे में सहज, कोई भी बात हमें मुश्किल नहीं लगेगी छोड़ना, क्योंकि उसके एवज में ये महानता हमारे अंदर आती जाएगी। केवल पहले हमारे संकल्प में दृढ़ता, और दृढ़ता के आधार से हमारा उस पर वो अटेंशन और चिंतन चलता रहे। आप जानते हैं जिस बात का अधिक चिंतन करो, चेहरे के फीचर्स, चैन हमारे ऐसे बन जाएंगे तो चेतनता जो हमारी बनती है, हमारे चिंतन से हमारी चेतनता बनती है। तो ये हमारा चैतन्य स्वरूप, जैसा हमारा चिंतन ऐसा हमारा स्वरूप। चिंतन में परिवर्तन इसी दृढ़ता के आधार पर आता है। आज तो दादी ने भले सबसे हाथ उठवाया और सब बड़े उमंग और खुशी से हाथ उठवाती है, बड़ी खुशी की बात है, परंतु इस बात को आप साधारण नहीं समझे। ये नहीं समझो चलो दादी ने पूछा है तो हमको हाथ उठाना ही है, सब उठाते हैं तो हम कैसे नहीं उठाएंगे, चलो इसी शर्म के मारे उठा भी लिया, ये भी अच्छी बात है। परंतु अंदर में हमें ये पक्का करना चाहिए, भगवान के घर में हमने प्रतिज्ञा की है। और जब हम समझते हैं ये अच्छी बात है, दिव्य जीवन, अलौकिक जीवन, ऊंचे ते ऊंची जीवन है, जब हमने ऐसी जीवन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया है, कदम उठाया है, कदम पर कदम हमारा आगे बढ़ता जाए, उसके लिए यही बात हमारे मन के अंदर हो, बाबा जो आज हमें कहते हैं वो हमको करके ही दिखाना है जरूर, अर्थात करना ही है। पूछो अपने आप से, कहाँ तक ऐसी दृढ़ता हमारे मन के अंदर है? या कभी कभी हम बात सुनते हैं, कभी कभी किसके मन में ख्याल है, बाबा तो कहते हैं, करता कौन है, चलो करेंगे। ऐसे ऐसे अपने को तसली दे करके चलाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम उसके जीवन में दिव्यता की धारणा सहज नहीं बनेगी। भिन्न भिन्न प्रकार से माया कभी हल्के रूप में कभी भारी रूप में आती ही रहेगी। कहाँ वो पहचान भी पाएंगे, कहाँ वो नहीं भी पहचान सकेंगे। और जैसे कि वो जानबूझ करके अपने संकल्पों को फ्रीडम दे देते हैं, कहाँ भी उसके संकल्प जाते रहे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपका अपने पर कितना अटेंशन है, नहीं तो हम लोगों का वो अटेंशन रहता था। योग में हम बैठे हैं, हमारी कोई भी कर्म इंद्री चंचल नहीं हो, चंचल माना हिलनी नहीं चाहिए, केवल स्थूल भी, स्थूल टांगे भी। अगर हम 2 घंटे बैठे हैं, क्योंकि छोटे थे उस समय, तो एज भी ऐसी थी, जहाँ बैठो जैसे बैठो जितना समय बैठो बैठे ही रहेंगे। और बड़ी बात तो मन की लगन लगी हुई रही, इसलिए भी शरीर बड़ा स्थिर रहता था। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, योग अर्थात मन की एकाग्रता। समझाने के लिए सहज शब्दों में हम बताते हैं, योग अर्थात याद, बाप से संबंध, परंतु निरंतर लगा रहे। निरंतर का मतलब निरंतर केवल जितना समय बैठते हैं उतना ही समय नहीं, उतना समय भी हम देखें कि बरोबर एकाग्रता पूर्वक लगा रहता है। और हर एक पूछे अपने आप से, अपनी सच्ची दिल से अपने से पूछे, कहाँ तक मन की एकाग्रता है? अगर हमारी आंखें चंचल होती है, चंचल का मतलब केवल ये नहीं है कि विकारी विचारों में जाती हैं, परंतु इधर उधर भी देखने लग जाती हैं, बिगर कोई विचार के क्यों आंखें इधर उधर जाती है, क्यों किसको देखती है, जबकि हमें अपना अभी अंदर का ध्यान एक बाप की तरफ लगाना है। जब हमारा ध्यान एक बाप में लग जाता है, आप देखेंगे आपकी आंखें कभी नहीं विचलित होंगी। क्यों मनुष्य कहते हैं मन बड़ा चंचल है और उसके बाद ये आंखें बड़ी चंचल है, आंखें भी बहुत धोखा दे देती हैं। ऐसे तो देखो सब कर्म इंद्रियां कान भी बड़े धोखेबाज हैं। बैठे होंगे यहां, उधर आवाज होगा तो भी कान फड़काएगा, आवाज सुनाई पड़ेगा, और जब आवाज सुनाई पड़ेगा तो मन का ध्यान जाएगा, आंखें भी जाएंगी। अब इन सब बातों को वर्णन करने में बात बड़ी लगती है, परंतु ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इस बात की जागृति होनी चाहिए वर्तमान समय के अनुसार। आप लोग देखते होंगे बाबा की साकार बाबा की मुरलियों में बार बार फिर से आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। कल की मुरली कितनी बाबा और बच्चों का वार्तालाप, विदेही बाप आया है तुम बच्चों को विदेही बनाने के लिए। अगर इस बात पर हम स्वयं से विचार करें, कहां तक हमने विदेहीपन का अनुभव किया है, ये समझ तो लिया मैं आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप होकर के बैठना, आत्मा आत्मा भाई भाई है, वो दृष्टि हमारी कितनी बनी हुई है, किस प्रकार से हमारी बनी हुई है। बरोबर हमें जब एक दो को देखते हैं स्मृति आती है, बार बार चलते चलते अपने से ये प्रश्न पूछते रहना, अपने पर अटेंशन, क्यों हमें पता है अभी हम मालिक हैं, शरीर के भी मालिक हैं, बल्कि अपने मन बुद्धि की भी मैं आत्मा मालिक हूं। भल ये मन बुद्धि मुझे आत्मा की चेतन शक्ति है, मेरी चेतन शक्ति है, मन संकल्प शक्ति मुझे आत्मा की संकल्प शक्ति है, और मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। अपने अंदर मुझे देखना है कि बार बार मुझे कितना बार सारे दिन में ये स्मृति आती है। भले ये बात हमारे लिए कॉमन है, इस बात को हम मान चुके हैं, पूछा जाएगा सब कहेंगे हम निश्चय बुद्धि है, कोई भी नहीं कह सकता है मुझे निश्चय नहीं है। निश्चय का प्रमाण, निश्चय का प्रमाण जिसके लिए हम निश्चय बुद्धि है, उनके हर बोल में हमारा निश्चय, और निश्चय का प्रमाण जो वो कहता जाए और हम करते चले निसंकोच, बिगर कोई इधर उधर के ख्यालात। बाबा ने कहा, वैसे भी देखो भक्ति मार्ग के शब्दों में कहा जाता है भक्तों को भगवान के लिए कितनी श्रद्धा और प्रेम रहता है। आप सोचो हम बच्चों को बाप के लिए कितना प्रेम होना चाहिए, और अगर हम पूछें अपने आप से कितना हमें अपने बाप के लिए प्यार है। प्यार का पहला प्रमाण है, मिसाल देते हैं ना, जिसके जिसके साथ प्यार होता है उनकी हर बात को स्वीकार किया जाता है। वैसे समझाने में मिसाल देते हैं ना, हम पूछे अपने आप से हमारा बाबा से प्यार है, प्यार का प्रमाण, बाबा के हर बात को हम अपनाते जाएं, जीवन के कर्मों में लाने के लिए हम बंधायमान हैं, ऐसी जिम्मेवारी हमें अपनी जीवन पर लेनी चाहिए, तब ही हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकती है। और जब हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी, तभी हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहेंगे। अभी पूछे हर एक अपने आप से, हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? बाबा पूछते हैं, हम कहाँ तक अपनी संपूर्णता को जान चुके हैं और अपने जीवन में ला चुके हैं, कहाँ तक हम संपूर्णता के नज़दीक पहुँचे हैं, ये हम अपना चार्ट निकाल सकते हैं? कहेंगे नहीं, अभी तक तो किस न किस रूप से माया अपना मुखरा दिखाती रहती है, अभी तक तो व्यर्थ को खत्म करने का प्रयत्न करते रहते हैं। वास्तव में अभी के समय अनुसार बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, बच्चे व्यर्थ से मुक्त, सदा समरथ संकल्प। समरथ बनने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, व्यर्थ के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप, क्यों कभी प्रवाह व्यर्थ का है, व्यर्थ का समुद्र खुला हुआ है और उसको मथन करके हमको समर्थ बनाना है। इस समुद्र में रहते हुए हमें समरथ बन के चलना है, अपने विचारों को समरथ बना के चलाना है, तब ही हम श्रेष्ठ, अर्थात बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम सतो प्रधान थे। ओरिजिनलिटी हमारी सतो प्रधान है, मैं आत्मा अनादि अविनाशी स्वरूप में पवित्र आत्मा हूँ। जब मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, शरीर को धारण करते अनेक जन्म मरण के चक्कर में आके, अनेकों के संग में आकर के यहाँ वहाँ से इम्प्यूरिटी हमारे में भर गई, अब जब मुझे स्मृति आ गई है, मैं तो वो ही हूँ, इस संघ के रंग में ने मेरा ये हाल कर दिया है, इसलिए इस संघ को हमें छोड़ ही देना है। सदा अपने अंदर विचार सत बाप का ही चिंतन हो, सत शिक्षक के शिक्षाओं को ही हम याद करते रहें और सत गुरु की आज्ञा, वैसे भी कहा जाता है गुरु की आज्ञा माने माथे, जो गुरु कहे वो हम मानते ही चले, तो गुरु की आशीर्वाद हमें क्या से क्या बना देती है। और हम जानते हैं बाबा के हमें रोज वरदान मिलते ही रहते हैं, एक भी वरदान को अगर हम एक दिन भी चिंतन में लाएं और उनके सार को हम जीवन में अपनाने का पूरा प्रयत्न करें, तो हम अपनी जीवन के अंदर वह दिव्यता, वह श्रेष्ठता अनुभव जरूर करेंगे। चाहता हर एक है, जो बाबा कहते हैं वो मैं बन जाऊं, लेकिन बन जाने की तो विधि है ना, मकान नया बनाया जाता है, उसके लिए इतना धन, इतना सामान इकट्ठा करके इतने काम करने वाले लगाने पड़ते हैं, पुराने करने के लिए पुराना तो चलते चलते अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार से हमें अब अपनी जीवन को, आत्मा क्या थी, क्या है वास्तविक, आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है, बाबा ने अभी हमें बताया है, अब जब उसमें परिवर्तन आ गया, उस परिवर्तन को परिवर्तन करना है, पलटाना है सारा, तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। और युवा शक्ति मेहनत से डरने वाली नहीं, डरने वाली हाँ, मेहनत युवा के शारीरिक शक्ति को भी मेहनत चाहिए, मेहनत के सिवाय नहीं तो शरीर क्या करेगा, शरीर सुस्त बन जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हम जितनी मेहनत करें, इसमें हमें अपने मन को, अपनी संकल्प शक्ति को बड़ा शुद्ध बनाना पड़ता है। अपने संकल्प पर हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। संकल्प के अंदर हमारी वो महानता बनी रहे, सदा हमारे समर्थ संकल्प, सदा हमारे श्रेष्ठ बनने के संकल्प, और उनकी रोज रोज सहज विधियां बाबा बताते रहते हैं। कल दादी गुलजार ने बताया, वे सदा खुश रहो और सबको खुशियां देते रहो। खुश रहना है मुझे, मेरे में गम ना आवे, मेरे में दुख ना हो, मेरे में अशांति ना हो, उसकी विधि बस एक ही विधि, उस विधि को यथार्थ रीति हम अपनाते जाएं। उसके लिए बाबा फिर रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाते रहते। अभी ज्ञान का विस्तार हम सबके बुद्धि में बहुत है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बन गए। अब हमें बाबा की आशाओं को, हर एक कहता है हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे, हम चाहते हैं हम बाबा की आशाएं पूर्ण करें। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे आशाओं के दीपक हो, दीपक सदा जगता रहता है, वही दीपक माना जाता है। अगर दीपक बुझा हुआ हो तो उसको दीपक कहेंगे क्या? तो हम जगे हुए दीपक, आत्मा चमकता हुआ सितारा है, हमारी वह ज्योत चमकती जाए, आगे उसकी रोशनी उज्जवल होती जाए, जितनी हमारे में दिव्यता आती जाएंगी, जितने हमारे विचारों में पवित्रता शुद्धता रहेंगी। एक दो के प्रति बुरा सोचना ये भी अशुद्धता है, एक दो से ईर्ष्या करना ये भी अशुद्धता है, एक दो के प्रति कोई गिलानी करना अथवा कोई की खामी देखना, हमें खामी देखने का आवश्यकता ही नहीं है ना। ये तो मुझे किसने काम नहीं दिया है ना कि तुम इसकी कमजोरी देखो, मिला हुआ है काम, ये है क्या हमारे पर जवाबदारी? जिस बात की हमारे पास जवाबदारी नहीं है, और बड़ी बात तो जिस बात से हमें कोई फायदा नहीं है और ये हमारा नुकसान है, कौन कहेगा हम ऐसा काम करूं जिससे हमको नुकसान ही पड़ता जाए। हम बाबा के सपूत बच्चे, हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, बाबा कोई हमको बड़ी आज्ञाएं नहीं देते हैं, छोटी सी आज्ञा, और वो भी हमारी जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें ऊंच बनाने के लिए, हम जो थे वही बन जाए, आत्मा सतो प्रधान बन जाए, आत्मा से वो जो भी अपनी त्रुटियां हैं, जो भूले हो चुकी वो हो चुकी। बाबा ने तो बड़ी सहज विधि बताई है, अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म करने का एक ही साधन, बस बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को निरंतर याद करूं। क्या इसमें मेहनत, क्या ये बड़ी बात? केवल हमें अटेंशन रखना है पूरा, अटेंशन की बात जरूर है। अगर हमारा अटेंशन है, ये अटेंशन कोई टेंशन देने वाला नहीं है। कोई कोई कहते हैं क्या सदा अटेंशन रख के थोड़ी चलेंगे, कभी तो हम फ्री भी तो हो जाएं। अटेंशन रखना भी तो बोझ है भाई, अटेंशन रखना बोझ है, ये अटेंशन नहीं रखेंगे तो दूसरी बातों का टेंशन होगा, कुछ ना कुछ तो मन के पर आएगा जरूर। तो हम ऐसा क्यों नहीं अटेंशन रखें तो टेंशन तो ना आवे, इधर उधर की बातें तो मेरे पर वार नहीं करें। केवल अटेंशन, अटेंशन से आत्मा शक्तिशाली बन जाती। वो मिलिट्री में बोलते हैं ना, अटेंशन कितने स्ट्रिक हो जाते हैं, हाँ एकदम खड़े रहेंगे, कैसे दिखाई पड़ेगा, अटेंशन बस, केवल अटेंशन। और लक्ष्य हमारा हो हमें अपने जीवन के अंदर सदा उमंग और उत्साह बना के रखना। आप लोग जानते हैं ज्ञान की भाषा में हम युवा किसको कहते हैं, युवा वही है जिसके जीवन में उमंग उत्साह बना हुआ है। उमंगो भरी जीवन वही युवा जीवन, क्योंकि युवा शक्ति जिसके अंदर शरीरक शक्ति, युवा एज शरीरक अनुसार हम बोलते हैं, क्योंकि उस एज के अंदर शरीर की भी पूरी शक्ति होती है, सर्व कर्म इंद्रियां शक्तिशाली रहती हैं, जो भी कार्य करना हो कर सकते हैं। और देखते हो दुनिया में भी हर कार्य में जितनी युवा शक्ति काम करती हैं वो कार्य आगे बढ़ता है। तो बाप ने भी, सर्वशक्तिमान भगवान ने आप युवाओं को इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। कितनी महान बात है, कितने भाग्यशाली जो भगवान ने आपको इस कार्य के लिए निमित्त बनाया। आप बने हो या नहीं भगवान के कार्य में निमित्त बने हुए हो, मानते हो ना अपने को, हाँ जब मानते हो तो उस कार्य को करते रहना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं चलो ये तो कर रहे हैं ना, मैं नहीं करूँगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई कोई अंदर से ऐसे भी करते हैं, जिनों को जरा शरीरक सुस्ती होती है ना, वो फिर ऐसे ऐसे दलील करते हैं। आप लोग तो जानते हैं, दलीलों वालों को भी जानते हैं, स्वयं के संस्कारों को भी जानते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। हर एक चाहता है मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, हर एक चाहता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो किसको धक्का देके तो नहीं आगे बढ़ेंगे ना। आज किसको धक्का देके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा मुझे छोड़ेगा क्या? अगर मैं ऐसे करूंगा, हम लोग जब होते थे यज्ञ में, हम लोगों को ये भी लेसन बड़ा पक्का रहता था, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख के और करेंगे। जबकि हम लोग कोई एक दो पर डिपेंड नहीं रहते थे, परंतु ये बाबा की शिक्षा, मम्मा हमेशा हम लोगों को कहती थी कि ये जरूर ध्यान रखो कि कर्म मुझे वो करना है जिससे और को शिक्षा मिले, अर्थात मेरा कर्म सदा श्रेष्ठ कर्म हो, शिक्षा स्वरूप बने हुए हो। तो जब बाबा ने हमें इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है तो हमें अपने जीवन के अंदर महानता को धारण करना है, और उस महानता का एग्जाम्पल हमारे सामने स्वयं पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा है। हम सदा अपने पास मम्मा बाबा की बातें याद रखते रहें। देखो रोज रोज बाबा हमें पढ़ाते हैं, चाहे हम कभी मिस भी कर ले, परंतु बाबा हमें पढ़ाना मिस नहीं करते हैं। पढ़ने वाले मिस कर लेंगे, पढ़ाने वाला कभी मिस नहीं करता है। तो यह भी हमें स्वयं को समझाना है, जब ऊंचे ते ऊंचा बाप स्वयं रोज आकर हमें पढ़ाता है, पढ़ने वाले हम, सीखने वाले हम, श्रेष्ठ पद हमको चाहिए, ऊंचा पार्ट हमें बना, हमें चाहिए, और हमारा पार्ट ऊंचा बने उसके लिए बाबा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और हम अपने लिए अलबेले बन के चले। तो ये अलबेलापन जो हमारे में कभी आलस्य, कभी सुस्ती, कभी यहाँ वहाँ के विचार, कभी एक दो को देखना, कभी व्यर्थ का सामना करना, ये सब बातें जो हमारे पास आती है वो आती ही है अलबेलेपन से। जब हमारा अटेंशन है, माना हम अलर्ट है, वैसे भी देखो अलर्ट के आगे कोई दुश्मन नहीं आ सकता है, अलबेलेपन के आगे कोई ना कोई दुश्मन आता ही रहेगा। इसलिए इस जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन और ब्रह्मा मुख वंशावली जो है ही दिव्य जीवन, पवित्र जीवन, उसके अंदर कोई भी इम्प्यूरिटी का संकल्प मात्र भी हमारे सामने नहीं आ सकता है। ऐसी हम स्वयं की दृढ़ता पक्की बना ले। भले कल तो किसने, मैं समझती हूँ अशोक भाई ने कह दिया, यहाँ जितने भी युवा भाई बहने हैं उनके अंदर कोई भी व्यसन नहीं है। याद रहे, व्यसन तो नहीं होगा, ये तो मैं समझती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ, परंतु इनके साथ हम इन सब बातों को मिलाते हैं, न कभी लड़ना, न कभी झगड़ना, न कभी कोई बात में झूठ बोलना। आज के ज़माने में, दुनिया में हेरा फेरी का ज़माना है, परंतु हम सच्चे बाप के बच्चे, हमें सत्यता से चलना है। सत्यता की शक्ति हमें अंदर जागृत करनी है। उस सत्यता को हम कैसे अपने अंदर भरते जाएं, ये स्वयं स्वयं से विचार करना है, क्योंकि बाबा हमें हर बात का स्पष्टीकरण देता ही जाता है। इसलिए पहली मूल बात हमारे लिए बाप के महावाक्यों को हम अच्छी रीत से मनन चिंतन करके स्वयं के स्वरूप में लाने का प्रयत्न करें, जिसके अंदर पहले हमारे संकल्प में दृढ़ता जागृत रहे, और उस दृढ़ता के आधार से हम अपने जीवन के कर्मों में परिवर्तन लाते रहें। अगर हम बाबा के सपूत बच्चे बनने चाहते हैं, तो हर बाबा की बात, महावाक्य हम अपने जीवन के लिए बाप की महावाक्य श्रीमत भगवत गीता का भी देखो कितना मान है, पुस्तक बना हुआ, और हम तो स्वयं साक्षात भगवान के मुखारवंद से उनकी श्रीमत को सुन रहे हैं। उन्हीं बातों को हम अपने जीवन के कर्मों में लाने का पूरा प्रयत्न करें। हम देखेंगे दो तीन बात भी अगर हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण की, तो और बातें हमारी ऑटोमेटिकली धारणा में आती ही जाएंगी, और हम स्वयं को महसूस करेंगे बरोबर जीवन के अंदर कितनी शुद्धि और शक्ति। जितनी हमारे में शुद्धि आती जाएंगी, उतनी हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएंगी। जितनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएंगी उतना ही हर बात में निर्णय शक्ति बड़ा सहज काम करेंगी, जिससे हम सहज रीति से अपने जीवन में आने वाली आई हुई समस्याओं से स्वयं को पार कर सकेंगे। इसलिए सदा हम अपने जीवन में यही लक्ष्य रखें। निश्चय का भी प्रमाण हमें देना है, बरोबर हम निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है तो विजयंती है। अगर हमारी व्यर्थ पर विजय नहीं होती है, अगर हमारी अपने संकल्पों को परिवर्तन करने में हम विजयी नहीं बनते हैं तो क्या माना जाएगा? ऐसे ऐसे प्रश्न स्वयं से करके स्वयं के अंदर दृढ़ता की शक्ति जागृत करते जाएं और उस दृढ़ता की शक्ति के आधार से स्वयं को संतुष्टता की मूर्त, स्वयं को प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते चले और हम स्वयं के अंदर स्वयं का विश्वास जागृत हो, बरोबर हम बाबा की हर शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए बाबा के सपूत बच्चे जरूर बनेंगे। इस प्रकार जो बाबा कहते हैं मेरे आज्ञाकारी बच्चे, मेरे सपूत बच्चे, बाबा तो हमें कहते हैं मेरे सिकीलदे बच्चे। पता है सिंधी में सिकीलदा शब्द बहुत बहुत ऊंचा माना जाता है। और जो सिकीलदा बच्चा होता है वो माँ बाप का बहुत अपने पर प्यार पाता है और उसका भी माँ बाप के प्रति बहुत बहुत प्यार होता है। देखें हम अपने आप को, बरोबर हमारा माता पिता से कितना अति प्यार है और उस अति प्यार का रिस्पान बाबा, तो भले कोई भी बच्चे का प्यार नहीं है तो भी बाबा तो उनको प्यार देता ही है, क्योंकि बाप तो है ही प्यार का सागर। इसलिए बाप की हम बच्चों के ऊपर नज़र सदा ही वह ऊंची है। ये मेरे बच्चे वो हैं जो पूज्य देवता थे, सतो प्रधान थे, इसलिए अब फिर से हमें इन बच्चों को ऐसा ही पूज बनाना है। बाप की हम बच्चों के ऊपर इतनी महान ऊंची नज़र है, ऐसी बाप की नज़र को हम स्वयं में स्वीकार करके स्वयं को भी ऐसा बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते रहें। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ फिर से आप सब युवा भाई बहने इस बार इतने इकट्ठे आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ अगर इस बार इतने हैं तो दूसरे बार कितना गुना जास्ती होंगे। वैसे तो हमारे पास युवा भाई बहने कम नहीं है, अगर सभी सेंटर की संख्या गिनती की जाए तो बहुत है। हम तो वैसे बताते थे 70-80 हज़ार युवा भाई बहने हमारे पास, परंतु वो सब एक समय पर इकट्ठे हो जाए तो गवर्नमेंट की आंखें कितनी खुल जाए, अरे ये यहाँ कौन सा फोर्स बैठा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र तब हमारे पर आकर्षित होंगी जब हमारी वो पवित्रता की शक्ति देश के अंदर, विश्व के अंदर अपने वाइब्रेशंस फैलाते हुए सर्व को पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस देती रहेगी। इसलिए देखो ये भी एक प्रोजेक्ट विशेष रूप से रखा हुआ है। कौन सा? युवा बने शांति दूत। अभी यह भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है शांति दूत बनने के लिए। अपनी स्थिति, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि और अपने कर्म कैसे होने चाहिए, वृत्ति के अंदर कैसी धारणा बनी हुई हो और उस वृत्ति से चाल चलन हमारी कैसी रहे, ये सब बातें उस प्रोजेक्ट के अंदर बताई जाएंगी। और उन बातों को ये भी एक सहज विधि स्वयं को बाप के सपूत बनने अथवा श्रेष्ठ जीवन बनाने। ओम शांति शांति।
दृढ़ता हमारे ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार है, आधार रहा है और इसको ही आधार बनाते हुए हम चलते चलेंगे। और अवश्य ही जैसे दादी जी ने हमें ये एक उम्मीद का दीपक हमारे अंदर जगाया है कि हमें बाबा का सपूत बच्चा और सबूत बनकर दिखाना है, ऐसा ही बनकर हम अवश्य दिखाएंगे। दादी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी युवा भाई बहनों से हम खास अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज़ बीच बीच में नहीं उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जो हमारा अगला क्लास होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, ये चांस कभी मिलता है और हमारी प्यारी गुलजार दादी जी हमारे बीच में हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा भाग्य है। हम तो समझते हैं बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे रत्नों के हम मुख से बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप सबको ये विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज़ बीच बीच में से ना उठें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बैठे रहेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे तो सुनाने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वालों को भी आनंद आएगा। तो दादी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, तत्पश्चात हमारी मीठी दादी जी आएंगी और हम उनके मुख से दादी जी हमारे लिए क्या लेकर आई हैं वो सुनेंगे।